न्यायियों अध्याय 8। हमारे बाइबल अध्ययन में आज का हमारा अध्ययन न्यायियों अध्याय 8 से आरंभ होता है। ए प्रेमी, कोई न कोई समस्या खड़ी करते ही रहते थे। अध्याय 8 में हम देखेंगे कि वे गिदोन को कठिन समय दे रहे थे, परंतु गिदोन उत्तम कूटनीति का प्रयोग करता है। वे गिदोन को भला बुरा कहने लगे कि उसने उन्हें मिद्यानियों से युद्ध करने नहीं बुलाया। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे गिदोन की विजय प्राप्त करने के बाद जब बैरी खदेड़े जा चुके थे तब वे आए। गिदोन ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ कहा कि उन्होंने तो दो राजाओं को परस्त किया था और उनके शौर्य के सामने उसने किया ही क्या है। उसने तो केवल 120,000 सैनिकों को ही हराया था। वे लोग बड़े गर्म मिजाज के थे और गिदोन द्वारा उन्हें संतुष्ट कर देना मेरे विचार में वास्तव में उत्तम कोटि की कूटनीति थी, क्योंकि आगे चलकर वे यप्ता के साथ भी यही चाल चलाते हैं, परंतु वो गिदोन की भांति समझदार नहीं निकला। गिदोन ने तो वास्तव में बड़प्पन का प्रदर्शन किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? क्या एप्रेम की छोड़ी हुई दाख भी अबीएजर की सब फसल से अच्छी नहीं है? न्यायियों 8 अध्याय 2 पद। दूसरे शब्दों में, तुम्हें जो बचा कुचा मिला वो हमारी लूट से उत्तम है। तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरेब और जेब नाम मिद्यान के हाकिमों को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका। जब उसने ये बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। न्यायियों 8:3 पद। ये वास्तव में गिदोन का बड़प्पन था। मैं गिदोन को सराहता हूं। मेरे विचार में ये वास्तविक नम्रता है। ये एक सराहनीय गुण है। जब परमेश्वर ने उसे मिद्यानियों के विरुद्ध इसराइल की सेना का नेतृत्व करने के लिए कहा था, तब उसकी प्रतिक्रिया थी कि वो अपने पिता के कुटुंब में सबसे छोटा है। मैं कौन हूं कि ये काम करूं? उसने परमेश्वर का कहा सुनिश्चित किया और तब उसे सत्य निष्ठा से पूरा भी किया। ऐसी महान विजय पर वो फूला नहीं समाता, परंतु नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। शायद उसने सीख लिया था कि युद्ध का महिमावन परमेश्वर को ही जाता है। यही कारण था कि परमेश्वर ने अपनी सेना को कम करते करते केवल 300 सैनिकों तक सीमित कर दिया था, जिससे कि ये सिद्ध हो जाए कि विजय दिलाना परमेश्वर का काम था। तब गिदोन और उसके संगी 300 पुरुष जो थके मांदे थे तो भी खदेड़ते ही रहे थे, यर्दन के तीर आकर पार हो गए। न्यायियों 8 अध्याय 4 पद। 132,000 तो उन्होंने मार गिराया, परंतु अभी 1500 बचे हुए थे, भाग रहे थे और गिदोन की सेना उनका पीछा कर रही थी। ये तो बहादुरी है, क्योंकि यदि वो 15,000 सामना करते रुक जाए तो ये 300 लोग क्या करेंगे। उनकी बहादुरी सराहनीय है, परंतु अब वे थक चुके थे। मेरे ध्यान देने योग्य बात तो ये है कि वे अब भी 300 है, अर्थात गिदोन की सेना में से एक भी सैनिक नहीं मरा। यही कारण था कि गिदोन ने सारा श्रेय परमेश्वर को दिया था। कोई और श्रेय अपने ऊपर ले ले, परंतु गिदोन ने ऐसा नहीं लिया। पीछा करते करते वे सुक्कोत पहुंचे और वहां के लोगों से गिदोन ने अपने पुरुषों के लिए रोटी मांगी। तो उन्होंने कहा, क्या जेबा और सलमुना तुम्हारे हाथ में पड़ गए हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दें? नहीं नहीं, उनके 15,000 सैनिक अभी बचे हुए हैं और तुम लोग केवल 300 हो। यदि वे पलटकर तुम्हें हरा दें, तो तुम्हारी सहायता करने के कारण वे हमारे विरुद्ध हो जाएंगे। तब गिदोन ने उनसे कहा, जब यहोवा जेबा और सलमुना को मेरे हाथ में कर देता, तब मैं इस बात के कारण तुमको निर्जन प्रदेश के कटीले और बिच्छू पेड़ों से पुछवाऊंगा। ये कहकर वो पनुएल को गया, परंतु वहां भी उन्हें भोजन नहीं दिया गया। गिदोन ने उनसे कहा कि विजय होने के बाद जब मैं लौटूंगा, तब तुम्हारा गुम्मट ढा दूंगा। इस प्रकार वे थके मंदे ही बैरियों का पीछा करते रहे और अंत में गिदोन नोबा और योगबह का मार्ग लेकर उनकी सेना को मारा। तब जेबा और सलमुना जान बचाकर भागे तथा शेष 15,000 मारे गए। तब गिदोन ने नोबा और योगबह के पूर्व की ओर डेरों में रहने वालों के मार्ग में चढ़कर उस सेना को जो निडर पड़ी थी मार लिया। और जब जेबा और सलमुना भागे, तब उसने उनका पीछा करके मिद्यानियों के उन दोनों राजाओं अर्थात जेबा और सलमुना को पकड़ लिया और सारी सेना को भगा दिया। और योआश का पुत्र गिदोन हेरेस नाम चढ़ाई पर से लड़ाई से लौटा और सुक्कोत के एक जवान पुरुष को पकड़कर उससे पूछा, और उसने सुक्कोत के 77 हाकिमों और वृद्ध लोगों के पते लिखवाए। न्यायियों 8:11-14 पर तब गिदोन उन हाकिमों को पकड़कर अपने कहे अनुसार उन्हें कांटे चुबाए और बिच्छू पेड़ से कटवाया कि वे आवश्यकता में साथ ना देने का सबक सीखे। तब वे पनुहेल को आए और नगर के गुम्मट को ढा दिया तथा वहां के पुरुषों को घात किया, क्योंकि उन्होंने आवश्यकता में साथ नहीं दिया। गिदोन ने मिद्यानी हाकिमों से पूछा, जिनकी तुमने ताबोर पर्वत पर हत्या की थी, वे कैसे दिखते थे? उन्होंने कहा, वे गिदोन की तरह ही रूपवान थे और परमेश्वर के पुत्रों के से दिखते थे। गिदोन ने उनसे कहा, वे मेरे भाई थे, यदि तुमने उन्हें ना मारा होता तो मैं आज तुम्हें छोड़ देता, परंतु तुमने मेरे भाइयों को मार डाला। तब गिदोन ने एक किशोर से कहा, खड़ा हो, इन लोगों को मार दे। परंतु ये लड़का छोटा था, किशोर ही तो था, इसलिए वो राजाओं को देख झिझका कि उन्हें कैसे मारे। उन हाकिमों ने कहा, उठकर हम पर प्रहार कर, परंतु वो फिर भी साहस न जुटा पाया। अतः गिदोन ने उठकर जेबा और सलमुना मिद्यानी राजाओं को घात किया। तब इसराइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। न्यायियों 8:22 पद। दूसरे शब्दों में इसराइल गिदोन को राजा बनने की राय देने लगे। वे कहने लगे, तू और तेरा घराना हम पर राज करे। गिदोन ने कहा, तुम पर केवल यहोवा राज करेगा। गिदोन ने अपने चरित्र की महानता का फिर से प्रदर्शन किया। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। न्यायियों 8:23 पर। गिदोन ने एक महान चरित्र का प्रदर्शन किया कि केवल यहोवा ही राजा है। उसने केवल उनकी लूट में से कान की बालियां मांग ली थी। वे इश्माइली थे और कानों में सोने की बालियां पहनते थे। इस प्रकार इसे 20 किलो सोना प्राप्त हुआ। आज के युग में उसकी कीमत क्या होगी? वो धनी व्यक्ति बन गया होगा। उनका गिदोन ने एक एपोद बनवाकर, न्यायियों 8:27, वो अंग रखा जो सोने का था उनके लिए समस्या का कारण बन गया, क्योंकि गिदोन के घर आने वाले आगंतुक उसकी पूजा करने लगे थे। गिदोन यही चूक गया था। जब उसने देखा कि लोग उस अंग रखे को श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, उसे इसी समय उस अंग रेखा को नष्ट कर देना था। वो उनके लिए श्रद्धा का कारण अर्थात एक प्रकार की मूर्ति पूजा का कारण हो गया था। इस प्रकार मिद्यान इसराइलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया, और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। योआश का पुत्र यरुब्बाल तो जाकर अपने घर में रहने लगा, न्यायियों 8:28-29। वो अत्यंत आशीषित रहा, उसकी अनेक पत्नियां थी और 70 पुत्र थे, और उसकी जो एक रखेली शकेम में रहती थी उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और गिदोन ने उसका नाम अभिमेलेक रखा। निदान योआश का पुत्र गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया और अबीएजरियों के ओपरा नाम गांव में उसके पिता योआश की कब्र में उसको मिट्टी दी गई। गिदोन के मरते ही इसराइल फिर गए और व्यभिचारिणी की नाई बाल देवताओं के पीछे हो लिया और बाल बरीत को अपना देवता मान लिया, और इसराइलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण न रखा, और न उन्होंने यरुब्बाल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इसराइलियों के साथ की थी उसके घराने को प्रीति दिखाई, न्यायियों 8:31-35। जैसा कि नाविकों के लिए कहा जाता है कि प्रत्येक बंदरगाह में उनकी एक स्त्री होती है, इसी प्रकार हो सकता है कि गिदोन की भी हर एक नगर में एक रखेल थी। शकेम में उसकी जो रखेल थी उसके पुत्र का नाम अबीमेलेक था। अबीमेलेक ने शकेम के पुरुषों से कहा, उचित क्या है यह कि यरुबाल के 70 पुत्र तुम पर राज करें, या केवल हम ही पुरुष जो शकेम ही से हैं तुम्हारी हर बात को समझते हैं, या तुम चाहते हो कि पूरे 70 के 70 पुरुष तुम पर राज्य करें? उचित क्या है? इस प्रकार उसने शकेम वासियों को बहका दिया और अपना एक दल बनाकर गिदोन के अन्य सभी पुत्रों के घर घर जाकर उन्हें मार डाला। उसका केवल एक ही पुत्र इनमें से बचा जिसका नाम था योताम। ये अबीमेलेक का बड़ा ही निंदनीय और विवेकहीन काम था।